डॉक्टर डेव मैथ्यूसन, न्यू टेस्टामेंट साहित्य, व्याख्यान 26, 1 और 2, टिमोथी 2024, डेव मैथ्यूसन और टेड हिल्डेब्रांट। मैं डॉक्टर डेव मैथ्यूसन न्यू टेस्टामेंट इतिहास और साहित्य पढ़ा रहा हूँ, 1 और 2 टिमोथी उस पर व्याख्यान 26। ठीक है, चलिए आगे बढ़े और शुरुआत करें। पिछली कक्षा की अवधि में हमने पॉल के पत्रों के अंतिम खंड को देखना शुरू किया, जिसे देहाती पत्र के रूप में जाना जाता है। हालांकि यह उनके लिए सबसे अच्छा लेबल नहीं हो सकता है, लेकिन यह वह है जो आमतौर पर उपयोग किया जाता है, इसलिए मैं इसके साथ रहूंगा। हालांकि वहाँ हैं शायद पहले और दूसरे तीमुथियुस और टाइटस का वर्णन करने के बेहतर तरीके, अंतिम तीन अक्षर जिन्हें हम देखेंगे और जिन चीजों के बारे में हम बात करना चाहते हैं, उनमें से एक यह है कि वे पॉल के जीवन के अस्थाई ढांचे में कैसे फिट बैठते हैं। उदाहरण के लिए, वे अधिनियमों की पुस्तक में कैसे फिट होते हैं, विशेष रूप से 2 तीमुथियुस में, जो संभवतः आखिरी पत्र है जिसे पॉल ने 2 तीमुथियुस में अपनी लंबित फांसी से ठीक पहले लिखा था। लेकिन हमने 1 कुरिन्थियों, मुझे क्षमा करें, अध्याय 2 में 1 तीमुथियुस के एक पाठ को देखकर पिछली कक्षा की अवधि समाप्त की और पूछा कि 1 तीमुथियुस की पृष्ठभूमि को फिर से बनाने की हमारी क्षमता कैसी है और क्या चल रहा था और क्या है पत्र के निर्माण और लेखन में योगदान देने वाले कुछ कारक, विशेष रूप से किसी पाठ को पढ़ने के तरीके को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। हम अध्याय 2 के पहले भाग को देखते हुए शुरुआत करते हैं, जैसे कि अध्याय 2 के अंत में महिलाओं को उनके कपड़े पहनने के तरीके के बारे में पॉल के निर्देश, खुद को मोती और सोने और गूंथे हुए बालों से नहीं सजाना, और फिर उन्हें चुप रहने और चुप रहने का उनका आदेश, मनुष्यों को शिक्षा न देना या उन पर अधिकार न रखना। और जिस प्रश्न से हम जूझ रहे हैं या उठाना शुरू कर दिया है, वह यह है कि आज हम उसे कैसे पढ़ते हैं। क्या वह अनुभाग आज के लिए बाध्यकारी है या ये निर्देश क्या वे केवल पॉल के पहली शताब्दी के चर्च के लिए थे, और इसलिए हम उस पर बहुत संक्षेप में गौर करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, जरूरी नहीं कि मैं उस मुद्दे को हल करना चाहता हूँ या आपको बताना चाहता हूँ कि आपको इसके बारे में क्या सोचना चाहिए, बल्कि सिर्फ व्याख्यात्मक रूप से प्रदर्शित करने के लिए कि हम पवित्र शास्त्र के पाठ को कैसे देखते हैं, जिन कारकों पर हमें विचार करना है जब हम सोचते हैं कि हम कैसे पढ़ते हैं, यह आज के लिए है, हम इसे कैसे लागू करते हैं, और यह भी कि किसी पाठ की पृष्ठभूमि को समझने से हमें नए नियम के एक खंड को थोड़े अलग तरीके से पढ़ने में कैसे मदद मिल सकती है। तो हम 1 तीमुथियुस के अध्याय 2 को देखेंगे, साथ ही अध्याय 3 बुजुर्गों और उपयाजकों पर अनुभाग, और फिर 2 तीमुथियुस और तीतुस की ओर बढ़ेंगे, जिसके बारे में हम उन ग्रंथों के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ेंगे। और फिर मैं संक्षेप में बताने का प्रयास करना चाहता हूँ कि हम पॉल के शिक्षण से उसके बारे में क्या सीखते हैं। पॉल के सभी पत्रों में हम जो प्रमुख सूत्र और प्रमुख धार्मिक विषय पाते हैं, वे क्या प्रतीत होते हैं। ठीक है, आइए प्रार्थना के साथ शुरुआत करें। पिता, हम आपको इस विशेषाधिकार के साथ साथ नए नियम के रूप में आपके रहस्योद्घाटन को पढ़ने और उसका सामना करने की हमारी जिम्मेदारी को पहचानने के लिए फिर से धन्यवाद देते हैं। भगवान, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम न केवल इस बात पर ध्यान देंगे कि पाठ का क्या अर्थ है और इसे पहली शताब्दी की सेटिंग में कैसे सुना और समझा गया होगा, बल्कि इसे समझने और समझने के बाद हम बेहतर प्रतिक्रिया देने में सक्षम होंगे, यह 21वीं सदी में है। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, हमने 2 तीमुथियुस 2 में पाठ को देखना शुरू किया और विशेष रूप से महिलाओं को मोतियों और सोने और गूंथे हुए बालों के साथ दिखावटी कपड़े न पहनने के पॉल के निर्देश और चुप रहने के निर्देश भी दिए और उन्हें इसकी अनुमति नहीं है पुरुषों को पढ़ाना या उन पर अधिकार रखना। और एक चीज, इसे पढ़ने के तरीकों के बारे में थोड़ा और विशेष रूप से देखने से पहले हमने 2 चीजों पर प्रकाश डाला। सबसे पहले मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि सबसे अधिक संभावना है कि पॉल के निर्देश सामने आते हैं। वे एक बहुत ही विशिष्ट स्थिति से आते हैं। हमने पहली शताब्दी में नई रोमन महिला की अवधारणा के बारे में थोड़ी बात की और नई रोमन महिला की अवधारणा से पहले भी थोड़ी बात की, जिसने इस विशेष पाठ में महिलाओं के अभिनय के तरीके को प्रभावित किया होगा। इसलिए पॉल के निर्देश संभवत ऐसे नहीं हैं कि उसने बिना किसी कारण के ऐसा कहने का फैसला किया है, बल्कि संभवत वे उस समस्या के जवाब में हैं जो झूठी शिक्षा और शायद नई रोमन महिला के इस विचार ने अब पैदा कर दी है। गिरजाघर। इससे दूसरा मुद्दा सामने आता है, जैसा कि हमने कहा था कि अध्याय दो मुख्य रूप से चर्च की स्थिति को संबोधित करता है जब वह पूजा के लिए इकट्ठा होता है। यह जरूरी नहीं है कि घर में क्या चल रहा है या कार्यस्थल पर क्या चल रहा है या किसी के निजी जीवन में क्या चल रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पॉल को उन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि जब हम एक तीमुथियुस का अध्याय दो पढ़ते हैं तो हमें अवश्य पढ़ना चाहिए इसे इसकी उचित सेटिंग और संदर्भ में रखें। और पॉल यह संबोधित कर रहा है कि जब चर्च पूजा के लिए इकट्ठा होता है तो क्या होता है। अब हम इस पाठ को कैसे पढ़े? मूलतः दो तरीके हैं। कोई इस पाठ को सार्वभौमिक रूप से बाध्यकारी के रूप में पढ़ सकता है, यानी ये निर्देश पॉल ने चर्च में महिलाओं को दिए हैं, विशेष रूप से पुरुषों को पढ़ाने या उन पर अधिकार नहीं रखने के लिए, जिन्हें सार्वभौमिक रूप से बाध्यकारी के रूप में समझा जा सकता है। यानी पॉल मानता है कि ये निर्देश किसी भी समय किसी भी चर्च पर लागू होंगे, न कि केवल इफिसियन चर्च पर जिसे वह अब संबोधित कर रहा है। इसलिए भले ही यह किसी विशिष्ट समस्या का परिणाम हो, जो लोग इस दृष्टिकोण को रखेंगे वे कहेंगे नहीं, ये निर्देश सार्वभौमिक रूप से बाध्यकारी हैं। वे निर्देश हैं जो पॉल ने किसी भी चर्च को दिए होंगे। चर्च में विवाद के कारण उसने उन्हें इफिसियों को दे दिया। जिन चीजों पर वे जोर देंगे उनमें से एक यह है कि अध्याय दो और श्लोक 14 में, वास्तव में श्लोक 13 और 14 में, पॉल सृष्टि में अपने निर्देशों को आधार बनाता प्रतीत होता है। जब वह कहता है क्योंकि पहले आदम की रचना हुई और फिर हव्वा की, तो दिलचस्प बात यह है कि पॉल अपने निर्देशों को सृष्टि में आधार बनाता है। यह तथ्य है कि पहले आदम की रचना की गई और फिर हव्वा की। और फिर सुझाव यह है कि भगवान ने पुरुष नेतृत्व के अध्याय दो में जो भूमिकाएं पाई हैं, वे सृजन पर आधारित हैं, जिस तरह से चीजें बनाई जाती हैं। इसलिए वे सृष्टि में उसके निर्देशों को आधार बनाकर इस बात पर जोर देंगे कि भगवान ने इसी तरह से पुरुष और महिला की भूमिकाएं बनाई हैं। अब पॉल कह रहा है कि चर्च में हमेशा इसका पालन किया जाना चाहिए, और इसलिए जो लोग देखेंगे कि इन निर्देशों पर अधिक जोर सार्वभौमिक रूप से बाध्यकारी है, कि पॉल उम्मीद करता है कि पहली सदी या 21वीं सदी में सभी चर्चों में सभी सेटिंग्स में उनका पालन किया जाएगा। वे इस तथ्य पर ध्यान आकर्षित करेंगे कि पॉल ऐसा लगता है सृष्टि में उनके निर्देशों को सृजित व्यवस्था के धर्मशास्त्र में आधार बनाया गया, तो यह उन्हें लेने का एक तरीका है। लेकिन उसके अंदर विभिन्नताएं हैं। वे सभी जो इन निर्देशों को सार्वभौमिक रूप से बाध्यकारी मानते हैं, उन्हें उसी तरह से बाध्यकारी नहीं मानेंगे। दूसरा दृष्टिकोण यह होगा कि इन निर्देशों को केवल इफिसस के चर्च में इस विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए पॉल के निर्देशों के रूप में देखा जाए। तो दूसरे शब्दों में, पॉल ने जरूरी नहीं कि ये निर्देश किसी अन्य चर्च को दिए हों। यह सिर्फ इतना है कि इफिसस में एक विशेष समस्या है और अब वह उस समस्या को रोकने या उस समस्या को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, और इसलिए ये निर्देश केवल इस विशिष्ट स्थिति के लिए हैं। इस स्थिति के बाहर, जहां यह स्थिति कायम नहीं है, तब पॉल को इन निर्देशों के सार्वभौमिक रूप से बाध्यकारी होने की उम्मीद नहीं थी। इसलिए यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या आप सोचते हैं कि पॉल शायद सृजन क्रम पर जोर दे रहा है और अपने निर्देशों को सृजन क्रम में आधार बना रहा है ताकि आप इन निर्देशों को सार्वभौमिक रूप से बाध्यकारी के रूप में देख सकें, या क्या आप पाठ को अधिक के रूप में देखते हैं। आप विशिष्ट सेटिंग पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं और वह विशिष्ट समस्या और पृष्ठभूमि जिसके कारण आप इन निर्देशों को केवल पहली सदी के चर्च तक सीमित रखेंगे, यह निर्धारित करेगा कि आप पाठ को कैसे पढ़ते हैं। अब दूसरा भी, भले ही आपको लगता है कि पॉल नहीं है, भले ही आप सोचते हैं कि ये निर्देश केवल पहली सदी के चर्च के लिए हैं और पॉल ने नहीं सोचा था कि वे सार्वभौमिक रूप से बाध्यकारी थे, इसका मतलब यह नहीं है कि वे अभी भी लागू नहीं हैं किसी तरह। यदि आपको लगता है कि निर्देश सार्वभौमिक रूप से बाध्यकारी हैं, तो आप पाठ को बिल्कुल अलग तरीके से लागू करेंगे। मेरा मतलब है, किसी भी तरह से यह अभी भी चर्च के लिए भगवान के शब्द हैं और उन्हें अभी भी लागू करने की आवश्यकता है। लेकिन आप उन्हें कैसे लागू करते हैं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या आपको लगता है कि निर्देश बाध्यकारी हैं और वे सभी समय के लिए हैं, यह एक सार्वभौमिक रूप से मान्य सिद्धांत है, या क्या आप निर्देशों को मुख्य रूप से पहली शताब्दी के संदर्भ तक सीमित मानते हैं जिसे पॉल संबोधित कर रहे थे। यदि आप इसे और आगे बढ़ाने में रुचि रखते हैं, तो मैंने पुस्तकों की इस श्रृंखला का कई बार उल्लेख किया है। श्रृंखला को जोंडरवन पब्लिशिंग कंपनी द्वारा काउंटरपॉइंट सीरीज कहा जाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, उनके पास इसके चार दृश्यों और उसके दो विचारों पर पुस्तकों की एक पूरी श्रृंखला है। उनके पास मंत्रालय में महिलाओं के बारे में दो विचारों पर एक किताब है, जहां दो व्यक्ति यह तर्क दे रहे हैं कि ये निर्देश सार्वभौमिक हैं, हालांकि वे थोड़े अलग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। आपके पास दो अन्य व्यक्ति यह तर्क दे रहे हैं कि वे सार्वभौमिक रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, और वैसे ये कोई पुरुष और महिला का मामला नहीं है। मेरे पास बहुत से पुरुष हैं जो तर्क देते हैं कि यह सार्वभौमिक नहीं है। मैंने महिलाओं के कई तर्क पढ़े हैं जो तर्क देते हैं कि ये निर्देश बाध्यकारी और सार्वभौमिक हैं। इसलिए यह इतना अधिक पुरुष या महिला का मुद्दा नहीं है जितना कि आप किस पक्ष पर आते हैं। इसलिए यदि आप इसे आगे बढ़ाने में रुचि रखते हैं, तो मैं आपको जोंडरवन प्रकाशन श्रृंखला, काउंटरपॉइंट श्रृंखला और मंत्रालय में महिलाओं के दो दृश्य पुस्तक की ओर निर्देशित करूंगा। अध्याय तीन एक और उदाहरण, अध्याय दो की तरह हम अध्याय दो को कैसे पढ़ते हैं, यह हमारे द्वारा बनाई गई पृष्ठभूमि और उस समस्या पर निर्भर करता है जिसे पॉल संबोधित कर रहा है। अध्याय तीन इस मायने में समान है कि यह देहाती पत्रों, विशेष रूप से एक तीमुथियुस की हमारी चर्चा पर वापस जाता है और कोई इसके व्यापक उद्देश्य को कैसे समझता है। यदि कोई एक तीमुथियुस को मुख्य रूप से एक प्रकार के चर्च मैनुअल के रूप में देखता है, तो हमने चर्च मैनुअल दृश्य या एक तीमुथियुस के अनुदेशात्मक मैनुअल दृश्य के बारे में बात की, जो मुख्य रूप से एक तीमुथियुस को संबोधित करते हुए देखता है कि चर्च को कैसे चलाया जाए, चर्च को कैसे व्यवस्थित किया जाए, चर्च को क्या करना चाहिए। हालांकि मैंने आपको सुझाव दिया कि सबसे अधिक संभावना यह नहीं है कि पॉल क्या कर रहा है, बल्कि पॉल संबोधित कर रहा है, जैसा कि वह हमें एक तीमुथियुस एक के पहले तीन या चार छंदों में बताता है, वह हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि वह एक बहुत ही विशिष्ट समस्या को संबोधित कर रहा है। और वह यह है कि कुछ अन्य पत्रों की तरह जो उसने पहले ही लिखे हैं, किसी प्रकार की झूठी शिक्षा या विचलित शिक्षा ने अब इफिसस में चर्च में घुसपैठ कर ली है, इसलिए वह टिमोथी को इससे निपटने में सक्षम बनाने के लिए टिमोथी को लिखता है। इसलिए मैं यह उम्मीद नहीं करूंगा कि पॉल हमें वह सब कुछ बताएगा जो वह तब बताता जब वह कोई चर्च मैनुअल बना रहा होता। इसके बजाय वह तीमुथियुस को केवल वही निर्देश देगा जो इस समस्या इस शिक्षण, चाहे जो भी हो, को संबोधित करने के लिए आवश्यक है। और इसलिए यह हमारे अध्याय 3 को पढ़ने के तरीके को कैसे प्रभावित करता है। अध्याय 3 चर्च द्वारा दो अलग अलग भूमिकाएं निभाने के लिए व्यक्तियों के चयन के लिए समर्पित है, अर्थात बुजुर्ग और डीकन। और इसलिए सबसे पहले पॉल बुजुर्गों के मुद्दे को संबोधित करता है और अपने पाठकों को बताता है कि बुजुर्ग होना एक योग्य और महान कार्य है, लेकिन यहाँ योग्यताएं हैं, और वह कई योग्यताओं को सूचीबद्ध करता है जिन्हें एक बुजुर्ग को चुने जाने के लिए पूरा करना होगा चर्च में एक बुजुर्ग के रूप में कार्य करने के लिए। और फिर वह आगे बढ़ता है और डीकनों के लिए भी वही काम करता है। अब एक बार फिर जब हम इस पाठ के बारे में इसकी सेटिंग के प्रकाश में सोचते हैं, तो क्या पॉल हमें यह निर्देश देने की कोशिश कर रहा है कि बड़ों से क्या अपेक्षित है और उन्हें कैसे चुनना है, या क्या पॉल तीमुथियुस को मुकाबला करने और निपटने के बारे में निर्देश देने में अधिक रुचि रखता है इस झूठी शिक्षा से? यदि यह बाद की बात है, तो मुझे उम्मीद नहीं होगी कि तीमुथियुस या पॉल हमें यह जानने के लिए सब कुछ बताएंगे कि बुजुर्ग और डीकन क्या हैं और उन्हें क्या करना चाहिए और उन्हें कैसे चुनना है, आदि आदि। और यह वही है जो आप पाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब आप एक तीमुथियुस 3 पढ़ते हैं, तो आपको पहली सदी के चर्च में बुजुर्गों और उपयाजकों ने वास्तव में क्या किया, इसके बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। आपको उनके चरित्र के बारे में सब कुछ मिलेगा और विशेष रूप से उनकी सिखाने की क्षमता पर जोर दिया जाएगा। ऐसा क्यों? एक तीमुथियुस 3 का मेरा सारांश यह है कि पॉल इस मुद्दे को इसलिए संबोधित करता है क्योंकि शायद चर्च के लिए इस झूठी शिक्षा का मुकाबला करने का सबसे अच्छा मौका यह है कि अगर उनके पास ऐसे नेता हैं जो योग्य हैं, विशेष रूप से अच्छे सिद्धांत सिखाने में सक्षम हैं। यह चर्च के लिए झूठी शिक्षा का मुकाबला करने में सक्षम होने का सबसे अच्छा तरीका होगा। तो पॉल कहते हैं, फिर से पॉल वस्तुतः इस बारे में कुछ नहीं कहता है कि बुजुर्ग और डीकन क्या करते हैं। एल्डर्स और डीकन शब्दों से और थोड़े से विवरण से आपको यह समझ में आता है कि एल्डर्स का प्राथमिक कार्य चर्च की प्राथमिक निगरानी है, विशेष रूप से शिक्षण, जबकि डीकन यह बहुत कम स्पष्ट है। क्या वे बड़ों के अधीन कोई अधीनस्थ समूह हैं? ऐसा नहीं लगता, लेकिन पॉल हमें नहीं बताता। एक उपयाजक का विचार एक सेवक से अधिक है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि वे केवल शारीरिक कार्य ही करते हैं? मैं एक चर्च की स्थिति में बड़ा हुआ जहां बुजुर्ग चर्च के आध्यात्मिक नेतृत्व के प्रभारी थे और शारीरिक रखरखाव के लिए डीकन प्रभारी थे। यह ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि यह एक तीमुथियुस में पाया जाए। फिर ऐसा इसलिए है क्योंकि पॉल हमें यह नहीं बता रहा है कि उपयाजक और बुजुर्ग क्या करते हैं। उनका मानना है कि चर्च जानता था कि उन्होंने क्या किया। वह मुख्य रूप से चिंतित है कि इफिसुस के चर्च में ऐसे बुजुर्ग और उपयाजक हैं जो उन्हें इस झूठी शिक्षा का सामना करने की अनुमति देंगे। इसलिए वह इन योग्यताओं को सूचीबद्ध करता है क्योंकि उस प्रकार का नेतृत्व उस झूठी शिक्षा का विरोध करने में सर्वोत्तम रूप से सक्षम होगा जिसका उसे सामना करना पड़ता है। वह हमें यह नहीं बताते कि उन्हें कैसे चुनना है। वह हमें इस बारे में नहीं बताता कि कितने एल्डर्स और डीकन होने चाहिए या क्या उन्हें चक्रीय आधार पर होना चाहिए और क्या उन्हें 3 साल तक रहना चाहिए। वह सब ठीक है। यह सिर्फ इतना है कि फिर से पॉल इस बात पर चुप है कि बुजुर्ग और डीकन वास्तव में क्या करते हैं और वे चर्च में कैसे कार्य करते होंगे। फिर से यदि आप एक तीमुथियुस को ध्यान से पढ़ते हैं, तो यह स्पष्ट है कि बुजुर्गों का प्राथमिक कार्य था जिसे शायद हम आज अपने चर्च में एक वरिष्ठ पादरी के साथ चर्च के भीतर प्राथमिक निरीक्षण, देखभाल और शिक्षण की जिम्मेदारी के साथ जोड़ेंगे। लेकिन फिर इसके अलावा वह वास्तव में वे क्या करते हैं इसके बारे में बहुत कुछ नहीं कहते हैं। इसलिए आज हमारे संप्रदायों में संभवतः इस बात को लेकर कुछ गुंजाइश है कि बुजुर्ग और उपयाजक वास्तव में क्या करते हैं और कभी कभी वे कैसे कार्य करते हैं। तो क्या हर कोई इसे देखता है? मुझे लगता है कि जब हम पृष्ठभूमि को समझते हैं तो हम कैसे पढ़ते हैं और हम उस तरह के पाठ को कैसे पढ़ते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। कुछ लोगों ने यह भी सुझाव दिया है कि इस विचलित शिक्षा ने, चाहे वह कुछ भी हो, चर्च के कुछ नेतृत्व को पहले ही प्रभावित कर दिया था, या उनमें से कुछ जो इस विचलित झूठी शिक्षा का प्रचार कर रहे थे वास्तव में चर्च में घुसपैठ कर चुके थे या नेता बन गए थे और अब योग्यताओं की ये सूचियां देने से यह होगा उन्हें बाहर निकालने और यह सुनिश्चित करने का पॉल का तरीका बने कि वे नेतृत्व में न आए। यह भी संभव है, लेकिन फिर जब आप पाठ पढ़ते हैं तो हमें इस बात से अवगत होना चाहिए कि पॉल क्या नहीं कहता है, क्योंकि वह सिर्फ बात नहीं कर रहा है, वह यहाँ सवाल नहीं पूछ रहा है कि बुजुर्ग और उपयाजक क्या करते हैं और वे कैसे कार्य करते हैं, और यहाँ बताया गया है कि किसे काम करना चाहिए बुजुर्ग और उपयाजक बने और उन्हें चुनने के मानदंड यहाँ दिए गए हैं, और यहाँ बताया गया है कि उन्हें कितने समय तक सेवा करनी चाहिए आदि आदि। वह एक सवाल पूछ रहा है, चर्च यह सुनिश्चित करके झूठी शिक्षा के खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता है कि उनके पास ऐसे योग्य नेता हैं जो इसका सामना करने में सक्षम होंगे। तो फिर निष्कर्ष में, एक तीमुथियुस का मतलब यह नहीं है कि चर्च को कैसे चलाना है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम इस बारे में कुछ नहीं सीख सकते हैं कि चर्च को कैसे व्यवस्थित किया जाना चाहिए या कार्य करना चाहिए या क्या होना चाहिए, चर्च को क्या करना चाहिए करो। लेकिन पॉल मुख्य रूप से उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा है, हालांकि हम चाहते हैं कि वह ऐसा करे। लेकिन फिर पॉल की मुख्य चिंता, जैसा कि कुलुस्सियों में थी, जैसा कि गैलाटियन में था, एक ऐसी शिक्षा को संबोधित करना है जिसे वह अब चर्च के लिए खतरा मानता है, इस बार इफिसस में चर्च के लिए। और अब वह तीमुथियुस को एक पत्र लिखता है जिसे अब इसे इफिसियन चर्च में ले जाना है। फिर तीमुथियुस वह व्यक्ति है जिसे पॉल ने संभवतः चर्च में इस स्थिति, इस समस्या का ध्यान रखने के लिए नियुक्त किया है। अब पॉल ने तीमुथियुस और इफिसियन चर्च को इस शिक्षण से निपटने में सक्षम बनाने के प्राथमिक उद्देश्य के लिए एक पत्र लिखा है जो चर्च को प्रभावित करने के खतरे में है। और मुझे ऐसा लगता है कि सभी निर्देशों को चर्च को शिक्षण से निपटने में सक्षम बनाने के उस लक्ष्य तक पहुंचने के रूप में देखा जा सकता है, और कई, प्रत्येक अध्याय शायद उन समस्याओं को प्रतिबिंबित करता है जो चर्च को प्रभावित करने वाली इस शिक्षा के कारण उत्पन्न हुई हैं। ठीक है, अच्छा, एक तीमुथियुस पर कोई प्रश्न? फिर से मैं एक तीमुथियुस पर ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहता था, लेकिन हमने आपको यह दिखाने के लिए कि व्यापक संदर्भ के प्रकाश में एक पाठ की व्याख्या करने में क्या शामिल है जो प्रभावित हो सकता है, कुछ अंशों को फिर से थोड़ा विस्तार से देखा यह, और हमने देखा कि एक कुरिन्थियों के साथ अक्सर जिस मुद्दे को संबोधित करने की सबसे अधिक संभावना थी, उसे फिर से बनाने की आपकी क्षमता नए नियम के कुछ खंडों को पढ़ने के आपके तरीके पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। ठीक है, चलो प्रारंभिक चर्च के मेलबॉक्स में पहुंचें और एक और पत्र निकालें, और हम तीमुथियुस को लिखे दूसरे पत्र को देखेंगे, और यह तीमुथियुस को लिखा दूसरा पत्र है। और जैसा कि हमने कहा, जैसे ही आप इसे पढ़ते हैं, जो बात अंततः स्पष्ट हो जाती है वह यह है कि यह पॉल का आखिरी पत्र है। पॉल बहुत स्पष्ट है कि उसे अब फांसी का सामना करना पड़ रहा है और उसकी मृत्यु बहुत करीब है। इसलिए उदाहरण के लिए दो तीमुथियुस में, विशेषकर अध्याय 4 और पद 6 में, वह कहता है, अस मेरे लिए, मैं पहले से ही अर्घ या पेय भेंट के रूप में उंडेला जा रहा हूँ और मेरे प्रस्थान का समय आ गया है। मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है, मैंने दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास बनाए रखा है। अब से मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी न्यायी है उस दिन मुझे देगा, और न केवल मुझे वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने की आशा रखते हैं। इसलिए पॉल स्पष्ट रूप से सोचता है कि वह अंत में है। और हम देखेंगे कि जिस तरह से हम दो तीमुथियुस को पढ़ते हैं उसका क्या मतलब है। सबसे पहले फिर से पॉल ने क्यों लिखा? जैसा कि मैंने अभी संक्षेप में बताया, पॉल अब अपने जीवन के अंत की ओर आ रहा है। उसे रोम में कैद कर लिया गया है और उसे फांसी दी जाने वाली है। और मूल रूप से वह अब क्या करता है, वह मशाल को आगे बढ़ाने के लिए लिखता है। हम कह सकते हैं उसने मशाल को तीमुथियुस को सौंप दिया है। वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि पॉलिन की विरासत और पॉलिन सुसमाचार जारी रहे। यह सुसमाचार जिस पर हमने रोमन और गैलाटियन आदि पुस्तकों में ध्यान केंद्रित किया है, अब पॉल यह सुनिश्चित करना चाहता है कि इसे आगे बढ़ाया जाएगा, और इसलिए वह अपनी फांसी और आने वाली मौत के मद्देनजर तीमुथियुस को लिखता है। अब वह टिमोथी को परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए लिखता है और उसे मशाल सौंपता है। दो तीमुथियुस का पत्र भी कुछ मायनों में पहली सदी के ठीक पहले, उसके दौरान और उसके थोड़ा बाद के लेखन के एक काफी सामान्य प्रकार से मिलता जुलता है, जिसे एक वसीयतनामा, एक तरह की अंतिम वसीयत और वसीयतनामा के रूप में जाना जाता है। और हमारे पास फिर से आप इनका अंग्रेजी अनुवाद पढ़ सकते हैं। प्राचीन दुनिया में एक वसीयतनामा एक लेखन था जो एक मरते हुए नायक के अंतिम शब्द थे, और कोई प्रसिद्ध व्यक्ति जो आम तौर पर अपनी मृत्युशैया पर था, यह उनके शिष्यों या उनके परिवार या बच्चों को अक्सर नैतिक निर्देश के साथ साथ भविष्य में क्या होने वाला है इसके लिए युगांतकारी प्रकार के निर्देश भी होंगे। लगभग उसी तरह की चीज जो हम कभी कभी प्रकाशित वाक्य या उस जैसी किसी पुस्तक में पढ़ते हैं। लेकिन दो तीमुथियुस उस तरह के साहित्य से बहुत मिलता जुलता है। एक अर्थ में इसे पत्र पत्रिका या पत्र रूप में एक वसीयतनामा के रूप में समझा जा सकता है। तो यह एक तरह से पॉल की अंतिम इच्छा और वसीयतनामा है। यह एक मरते हुए नायक के अंतिम शब्द हैं। सिवाय इसके कि पॉल अपनी मृत्युशैया पर नहीं है, वह फांसी की सजा पर है या यीशु मसीह के लिए उसकी गवाही के कारण उसकी जान ली जाने वाली है। लेकिन फिर मुख्य वे छंद हैं जो मैंने अध्याय 4 श्लोक 6 से शुरू करते हुए पढ़े हैं। फिर जहां तक मेरी बात है, मुझ पर पहले से ही भोग लगाया जा रहा है और मेरे जाने का समय आ गया है। इसलिए वसीयतनामा लेखन में स्पष्ट रूप से नायक के प्रस्थान और मृत्यु का अनुमान लगाया गया था। लेकिन फिर विदाई और अंतिम निर्देश उन लोगों को देंगे जो आसपास इकट्ठे थे। इस मामले में यह तीमुथियुस है जिसे पॉल का अंतिम और विदाई निर्देश प्राप्त होता है। इसलिए दो तीमुथियुस को पॉल की अंतिम वसीयत और वसीयतनामा के रूप में देखा जा सकता है। एक मरते हुए नायक के विदाई शब्द यदि मैं उस स्थिति और पृष्ठभूमि और उद्देश्य के प्रकाश में होता, यदि मैं दो तीमुथियुस के लिए एक विषय चुनता, तो यह होता कि पॉल तीमुथियुस को विश्वास के लिए संघर्ष करने का निर्देश दे रहा है। वह विश्वास सुसमाचार जो वह अब तीमुथियुस को देता है, वह मशाल जिसे वह अब देता है, वह तीमुथियुस को उसके लिए संघर्ष करने और उसके लिए लड़ने के लिए कहता है। और टिमोथी को अपने जीवन और अपनी शिक्षा दोनों में उस सुसमाचार को संरक्षित करने के लिए सुसमाचार में विभिन्न प्रकार के रूपकों का उपयोग करता है, क्योंकि पॉल दृश्य से प्रस्थान करने वाला है। और दो तीमुथियुस के बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, फिर बस आपको यह समझाने के लिए कि यह क्यों लिखा गया और क्या चल रहा है। आखिरी के बारे में क्या? टाइटस की किताब तीनों में सबसे छोटी है। पुनः पॉल के पत्रों को मुख्यतः लंबाई के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो टाइटस वह आखिरी पत्र नहीं है जो लिखा गया था, और फिलेमोन निश्चित रूप से नहीं था, लेकिन उनकी लंबाई के कारण वे पॉल के पत्रों के संग्रह के अंत में आते हैं। लेकिन टाइटस एक दिलचस्प किताब है, और जब आप टाइटस को पढ़ते हैं तो पहली चीज जो आपको पता चलती है वह है एक तिमोथी के साथ कई समानताएं। यही कारण है कि मैं टाइटस से शीघ्रता से निपटना चाहता हूं। लेकिन जब टाइटस की बात आती है तो पुस्तक के बारे में कुछ विशिष्ट बातें हैं जिन पर मैं ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। तो सबसे पहले टाइटस की भूमिका क्या है? पुनः एक और दो तीमुथियुस की तरह टाइटस की पुस्तक का नाम चर्च के नाम पर नहीं बल्कि उस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है जिसके लिए यह लिखी गई थी। ये देहाती पत्रियां काफी दिलचस्प हैं क्योंकि वे पॉल की ओर से एक अलग रणनीति को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। याद रखें, अधिकांश अन्य पुस्तकें जो हमने देखी आदेश के भीतर पत्र का परिचय विशिष्ट चर्चों एक विशिष्ट चर्च या चर्चों को संबोधित किया गया था, शायद इफिसियों को छोड़कर जो संभवतः एशिया माइनर में ईसाइयों और चर्चों को अधिक संबोधित किया जाता है, और ग्रीको रोमन साम्राज्य। लेकिन पॉल के अधिकांश पत्र चर्चों को नाम से संबोधित हैं। लेकिन यह दिलचस्प है कि एक और दो तीमुथियुस और तीतुस के साथ पॉल किसी विशिष्ट चर्च को संबोधित नहीं करता है बल्कि एक व्यक्ति तीमुथियुस या तीतुस को संबोधित करता है जो उस चर्च के लिए जिम्मेदार है और चर्च को उस जानकारी को संप्रेषित करने के लिए जिम्मेदार है। दूसरा अपवाद स्पष्ट रूप से फिलेमोन था, लेकिन पॉल फिलेमोन और उनेसिमुस के संबंधों के बीच एक विशिष्ट समस्या में अधिक रुचि रखता है, हालांकि इसका उद्देश्य व्यापक चर्च द्वारा सुना जाना था। लेकिन यह दिलचस्प है, ऐसा लगता है कि पॉल यहाँ एक अलग रणनीति का पालन कर रहे हैं। केवल चर्च को सीधे संबोधित करने के बजाय वह अब एक विशेष व्यक्ति को संबोधित करता है जिसे उसने उस चर्च पर नियुक्त किया है, और वह व्यक्ति चर्च को निर्देश और सामग्री बताने के लिए जिम्मेदार है, और टाइटस के साथ भी यही सच है। तब तीमुथियुस की तरह ही टाइटस को भी पॉल ने संभवतः ऐसी ही स्थिति से निपटने के लिए क्रेते की चर्च में छोड़ दिया था, अर्थात पॉलुस एक तीमुथियुस में जिस झूठी या पथभ्रष्ट शिक्षा को संबोधित कर रहा था उसकी प्रकृति जो भी हो तीतुस में भी कुछ ऐसा ही चल रहा होगा। लेकिन फिर जब आप टाइटस को पढ़ते हैं तो स्पष्ट रूप से पॉल उस समस्या या मुद्दे को संबोधित कर रहा है जिसका सामना चर्च कर रहा है, और अब उसने टाइटस को इससे निपटने के लिए वहां छोड़ दिया है, और अब वह निर्देश का एक पत्र लिखता है कि टाइटस को कैसे निपटना है। झूठी शिक्षा की यह समस्या क्रेते द्वीप पर स्थित चर्च में घुसपैठ कर चुकी है। अब हर कोई जानता है कि क्रेते कहाँ है। मुझे बस एक पल के लिए यहाँ आगे बढ़ने दीजिए। आपने यह मानचित्र दोबारा देखा है। यह क्रेते द्वीप है, यहीं। और फिर आप रोम की उनकी अंतिम यात्रा को देखते हैं जो प्रेरितों के काम 28 को समाप्त होती है। आप देखते हैं कि पॉल ने क्रेते द्वीप का दौरा किया था, लेकिन यह क्रेते है जहां एक चर्च स्थापित किया गया था, और अब पॉल ने टाइटस को क्रेते द्वीप पर भेजा है स्थिति से निपटने के लिए। फिर से कुछ झूठी शिक्षाएं चर्च को संक्रमित कर रही हैं, और अब पॉल टाइटस को इससे निपटने में मदद करने के लिए लिखता है। दूसरी बात यह भी है कि सबसे अधिक संभावना है, मैं दो तीमुथियुस के साथ इस बारे में कुछ और कहना चाहता था, लेकिन सबसे अधिक संभावना है एक और दो तीमुथियुस कम से कम और शायद टाइटस संभवतः अधिनियम 28 की घटनाओं के कुछ समय बाद लिखे गए थे। अधिनियम अध्याय 28 रोम में पॉल के साथ समाप्त होता है और कुछ और नहीं कहता है, और यह शायद ल्यूक की साहित्यिक रणनीति थी। याद रखें, ल्यूक यह प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा था कि यशायाह की पुनर्स्थापना के वादे को पूरा करने और सुसमाचार और परमेश्वर के लोगों को कम से कम यहूदी क्षेत्रों में फैलाने के लिए सुसमाचार कैसे शुरू हुआ। प्रेरितों के काम अध्याय 1 श्लोक 8 में ल्यूक ने कल्पना की कि सुसमाचार अंतः यशायाह की पूर्ति में अंतः पृथ्वी के छोर तक पहुंचेगा। इसलिए प्रेरितों के काम अध्याय 28 में एक बार जब सुसमाचार रोम तक पहुंच जाता है तो ल्यूक अपनी कहानी समाप्त कर देता है। लेकिन सबसे अधिक संभावना है 2 तीमुथियुस में पॉल जिस कारावास का सामना कर रहा है, वह कारावास जो उसकी मृत्यु का कारण बनने वाला है, वह उस कारावास से भिन्न है जिसके बारे में हमने प्रेरितों के काम अध्याय 28 में पढ़ा है। फिर से यह पुस्तक पर आधारित है अधिनियमों का। तो एक्ट्स इस यात्रा के साथ, इस लाल रेखा के साथ समाप्त होता है कि पॉल रोम में समाप्त होता है और यहीं यह समाप्त होता है। लेकिन सबसे अधिक संभावना है प्रेरितों के काम अध्याय 28 की घटनाओं के कुछ समय बाद पॉल को जेल से रिहा कर दिया गया होगा और वह किसी अन्य गतिविधि में शामिल हो गया होगा। संभवतः तब उसने 1 तीमुथियुस और तीतुस को लिखा होगा और फिर आखिरी बार जेल में बंद हुआ होगा और फिर उसने 2 तीमुथियुस की पुस्तक लिखी होगी। अब अन्य सुझाव भी आए हैं कि 1 और 2 तीमुथियुस और टाइटस अधिनियमों में कैसे फिट होते हैं, लेकिन यह सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सुझावों में से एक है, कम से कम ईसाई विद्वानों और नए नियम के छात्रों के लिए। तो यही क्रेते द्वीप है। एक विध्वंसक पत्र। दिलचस्प बात यह है कि टाइटस के बारे में दिलचस्प चीजों में से एक यह है कि वह कभी कभी कई विचारों, विश्वासों, परंपराओं या क्रेते द्वीप की प्रतिष्ठा के हिस्से को नष्ट कर देता है। उदाहरण के लिए क्रेते द्वीप वास्तव में लौकिक बन गया, अनैतिकता के लिए लगभग लौकिक और प्रसिद्ध तथा तेजी से और ढीले जीवन के लिए। कुछ लोगों ने इसे आधुनिक समय का या पहली सदी का लास वेगास या ऐसा ही कुछ बताया है। यहीं पर लोग बेतहाशा रहने लगे और कुछ भी करने लगे। क्रेते भी था, हमारे पास बहुत सारा साहित्य है। क्रेते किसी ऐसे व्यक्ति का पर्यायवाची प्रतीत होता है जो झूठ बोलता हो और झूठ बोलता हो। क्रेते दिलचस्प बात यह है कि यह दंतकथाओं में से एक थी, या जैसा कि परंपरा है, भगवान ज़ियूस का जन्मस्थान और दफन स्थान था। आपको आश्चर्य होगा कि उनके पास ऐसी परंपरा क्यों है जहां भगवान ज़ियूस को क्रेते में दफनाया गया था। लेकिन क्रेते सच बोलने के लिए नहीं जाने जाते थे। वास्तव में एक वाक्यांश जिसे आप अक्सर टिप्पणियों में उद्धृत करते हुए पाते हैं वह है, सभी क्रेटन झूठे हैं। यह एक वाक्यांश था जिसका उपयोग कुछ लोगों ने क्रेते को संक्षेप में बताने के लिए किया था। तो दिलचस्प बात यह है कि हम टाइटस में क्या पढ़ते हैं, इस पर ध्यान दें। ध्यान दें कि टाइटस अपना पत्र कैसे खोलता है। वह कहते हैं, अब पॉल ने इसे कहीं और नहीं कहा है, इसलिए आपको आश्चर्य है कि शायद पॉल क्रेते के साथ सीधे विरोधाभास और पैरोडी के रूप में इस पर जोर दे रहा है। क्रेते झूठ बोलने के लिए जाना जाता है और अब पॉल कहते हैं, तो मेरा यही मतलब है। आपको पूरे टाइटस में इसके अन्य उदाहरण मिलेंगे जहां पॉल स्पष्ट रूप से विशिष्ट सांस्कृतिक मूल्यों या जीवनशैली की चीजों को नष्ट कर देता है जिसके लिए क्रेते प्राचीन काल में जाना जाता है। या अध्याय 2 में एक और। अध्याय 2:11-14 में पॉल टाइटस के बारे में कहता है, तो फिर से आपको आश्चर्य होता है कि क्या उस भाषा का कुछ हिस्सा उस तरह की जीवनशैली के लिए विध्वंसक नहीं है जैसा कि क्रेते के लोग रहते होंगे। और इसके बजाय पॉल कुछ अधिक विध्वंसक और एक ऐसी जीवनशैली का प्रस्ताव करता है जो क्रेटन संस्कृति में जो विशिष्ट रही होगी उसकी तुलना में कट्टरपंथी है। तो पूरे टाइटस में इसके अन्य उदाहरण हैं जहां पॉल फिर से एक विध्वंसक प्रकार का पत्र लिख रहा है, विशिष्ट क्रेटन मूल्यों या क्रेटन पौराणिक कथाओं या क्रेटन शिक्षाओं और जीवन शैली विकल्पों और इस तरह की चीजों को नष्ट और कमजोर कर रहा है। तो फिर उद्देश्य क्या है? तो फिर कुल मिलाकर टाइटस का उद्देश्य क्या है? ऐसा प्रतीत होता है कि पॉल ने टाइटस को निर्देश देने के लिए फिर से टाइटस को लिखा है। पुनः टाइटस व्यक्ति है। जैसे उसने तीमुथियुस को इफिसुस में छोड़ा था, अब उसने तीतुस को उस शिक्षा से निपटने के लिए क्रेते में छोड़ दिया जिसने चर्च में घुसपैठ कर ली है। पॉल ने टाइटस को बुतपरस्त दुनिया में चर्च के जीवन के बारे में निर्देश दिया, और वह विध्वंस करता है, वह ईश्वर में विश्वास पैदा करके बुतपरस्त संस्कृति को नष्ट करने के लिए पत्र लिखता है जो कभी झूठ नहीं बोलता, और उन्हें सच्चे सदाचार का जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करके। इसलिए वह लिखते हैं कि वह टाइटस को निर्देश दे रहे हैं कि चर्च को बुतपरस्त माहौल के संदर्भ में अपना जीवन कैसे जीना है, और वह ऐसा उनका ध्यान उस ईश्वर की ओर आकर्षित करके या उसमें विश्वास पैदा करके करता है जो झूठ नहीं बोलता। और क्रेटन संस्कृति द्वारा सिखाई गई जीवन शैली के विकल्प के रूप में सच्चे सदाचार की जीवन शैली अपनाने में। अच्छा, और यह फिर से विस्तार के माध्यम से हम और भी बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन टाइटस उन किताबों में से एक है जिसे हम जल्द ही पढ़ने जा रहे हैं। और जब हम इब्रानियों तक पहुंचेंगे तो हम इब्रानियों की किताब पर काफी धीमे हो जाएंगे, लेकिन मैं पॉल के पत्रों की हमारी चर्चा को एक तरह से उन्हें एक साथ संश्लेषित करके समाप्त करना चाहता हूं। और पूछने के लिए, यदि आपको बहुत व्यापक ब्रश स्ट्रोक में चित्रित करना हो तो पॉल के सभी पत्रों से आप किन प्रमुख विषयों पर जोर देंगे? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमने बार बार देखा है, या कुछ प्रमुख विषय क्या हैं जिन्होंने पॉल की सोच और शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? और ये मेरे सुझाव हैं, और फिर से आप अन्य के बारे में सोच सकते हैं। मुझे लगता है कि उनमें से एक का श्रेय अतीत के किसी छात्र को जाता है जिसने यह सुझाव दिया था। मुझे याद नहीं आ रहा कि मेरे सिर के ऊपर से कौन सा उतर रहा था, लेकिन फिर भी मैं इसका विस्तार करने के लिए तैयार हूं। लेकिन जैसा कि मैंने पत्रों को देखा है और उन्हें एक साथ रखा है, जो चीजें मैं बार बार घटित होते देखता हूं, उनके पत्रों के माध्यम से एक धागे की तरह चलना या एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, सबसे पहले पॉल इस बात पर जोर देता है और फिर से यह कि औचित्य या मोक्ष कानून के कार्यों से अलग विश्वास के माध्यम से अनुग्रह द्वारा होता है, और हालांकि कार्य अभी भी पवित्र आत्मा द्वारा परिवर्तित जीवन का एक आवश्यक परिणाम है, तो ऐसा नहीं है कि कार्य वैकल्पिक हैं या कोई भूमिका नहीं निभाते हैं या सहायक या द्वितीयक भूमिका निभाते हैं। यह सिर्फ इतना है कि पॉल स्पष्ट रूप से तर्क देता है कि औचित्य, किसी का उद्धार, ईश्वर के सामने खड़ा होना, कानून के कार्यों या किसी अन्य कार्य से प्राप्त नहीं होता है, बल्कि यीशु मसीह में विश्वास से आता है, लेकिन यह अनिवार्य रूप से और एक परिणाम के रूप में होता है कि अच्छे कार्य साथ आते हैं। पॉल ने जो स्पष्ट किया है वह नई वाचा की पवित्र आत्मा का परिणाम है जो परमेश्वर के लोगों के जीवन को बदल देता है। एक अन्य प्रमुख विषय यह है कि पॉल ने कई बार इस बात पर भी जोर दिया है कि यहूदी और गैर यहूदी दोनों अब समान रूप से भगवान के लोग बन सकते हैं, और वे मोज़ेक कानून से बिना किसी संबंध के ऐसा कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, मोज़ेक कानून यह निर्धारित करने में कोई भूमिका नहीं निभाता है कि परमेश्वर के लोगों में से कौन है। और इसके अलावा इब्राहिम के वादे अब उन सभी के लिए हैं जिनका यीशु मसीह पर विश्वास है। तो याद रखें, ये दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। पहली शताब्दी में अधिकांश यहूदियों ने इन प्रश्नों का उत्तर दे दिया होगा। सबसे पहले, परमेश्वर के लोगों से संबंधित होने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ एक यहूदी के रूप में जीवन जीना है। इसका अर्थ है मूसा की व्यवस्था के प्रति समर्पण करना और मूसा की व्यवस्था के अधीन रहना। पुरुषों के लिए इसका मतलब खतना होना था। हर किसी के लिए इसका मतलब सब्बात का पालन करना, खाद्य कानूनों का पालन करना था, वे चीजें जो स्पष्ट रूप से अन्य जातियों में से एक को भगवान के लोगों के रूप में चिह्नित करती थीं। तो मूलतः उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि परमेश्वर के लोग होने का क्या अर्थ है। उन्होंने यहूदी जीवन शैली को अपनाकर राष्ट्रीय या जातीय रूप से इसका उत्तर दिया। इसका परिणाम किसी का पता लगाने में सक्षम होना था। दूसरे शब्दों में शुरुआती बिंदु इब्राहिम था। इब्राहिम के सच्चे लोग कौन हैं? उत्पत्ति 12 को याद करें, जहां परमेश्वर ने इब्राहिम से वादा किया था कि उसके पास एक महान राष्ट्र होगा और परमेश्वर उसे आशीर्वाद देगा और अंतः पृथ्वी के सभी राष्ट्र धन्य होंगे। तो कोई उस आशीर्वाद में कैसे भाग लेता है? इब्राहिम से किए गए वादों में कोई कैसे भाग लेता है? शारीरिक रूप से अब्राहम की संतान होने के द्वारा। इसीलिए पॉल इब्राहिम के साथ इतना समय बिताता है क्योंकि यही मोक्ष और औचित्य का आशीर्वाद और नई वाचा जुड़ी हुई है। वे इब्राहिम की संतान होने से जुड़े हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि इब्राहिम की सच्ची संतान कौन है? पॉल यह स्पष्ट करते हैं कि यह वे लोग नहीं हैं जो शारीरिक और जातीय रूप से अब्राहम के हैं, बल्कि वे लोग हैं जिनका यीशु मसीह में विश्वास है। वे अब अब्राहम के सच्चे बच्चे हैं। तो यदि यह सच है, तो यहूदी और अन्य जाति समान रूप से परमेश्वर के सच्चे लोगों से संबंधित हैं। उनके पास समान रूप से मुक्ति के वादे हैं। वे समान रूप से न्यायसंगत हैं और समान रूप से भगवान के सामने भगवान के सच्चे लोगों के रूप में खड़े हैं, जो पूरी तरह से यीशु मसीह में विश्वास पर आधारित हैं। हमने देखा कि पॉल किस तरह से ऐसा करता है। पॉल का तर्क है कि यीशु मसीह ही अब्राहम का सच्चा वंश है। यीशु मसीह अब्राहम का सच्चा वादा और वंशज है। और यदि यह सच है, तो परमेश्वर के लोगों से संबंधित होने का परिभाषित कारक अब जातीय पहचान नहीं है या मूसा के कानून का पालन करने से जुड़ा नहीं है। अब यह यीशु मसीह में विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि यहूदी और अन्य जाति, यदि यीशु में विश्वास ही एकमात्र मानदंड है, तो कोई देख सकता है कि क्यों यहूदी और अन्य जाति समान रूप से अब्राहम के माध्यम से आने वाले मोक्ष के आशीर्वाद में भाग ले सकते हैं। एक और चीज जो मुझे मिलती है, हालांकि इस पर शायद ही कभी जोर दिया जाता है, वह यह है कि ईश्वर की कृपा और शक्ति पीड़ा के माध्यम से प्रकट होती है और ईश्वर के लोगों को पीड़ा सहने के लिए बुलाया जाता है। ध्यान दें, विशेष रूप से 2 कुरिन्थियों जैसी पुस्तक में, लेकिन ध्यान दें कि पॉल कितनी बार अपने प्रेरितत्व के प्रतीक के रूप में पीड़ा पर जोर देता है। यहां तक कि उन लोगों के बीच में भी जो अपने भाषण में उनकी सामाजिक स्थिति और उनके अलंकारिक उत्कर्ष की ओर इशारा करते हैं, पॉल लगातार अपने प्रेरित होने के संकेत के रूप में अपनी पीड़ा की अपील करते हैं। और 2 कुरिन्थियों में बहुत ही स्पष्टता से वास्तव में उस विषय पर जोर दिया गया है जो पुराने नियम में शुरू होता है, और वह यह है कि भगवान की शक्ति और कृपा विशेष रूप से मानव पीड़ा के बीच में और उसके माध्यम से प्रकट होती है। दूसरा, परमेश्वर के लोगों ने यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान में एकजुट होकर पाप और मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। हालांकि पाप अभी भी एक वर्तमान वास्तविकता है जिससे लगातार निपटना होगा, तो यह उस सांकेतिक और अनिवार्य तनाव को दर्शाता है जो हमने पॉल के पूरे पत्रों में देखा है। यानी पॉल पूरी तरह से आश्वस्त है और बिल्कुल सटीक बयान दे सकता है, जैसे कि आप पाप के लिए मर चुके हैं और आप पहले से ही जीवन के नएपन के लिए उठाए गए हैं। तो आप अब और पाप में कैसे रह सकते हैं? वह इस तरह के पूर्ण बयान दे सकता है, फिर भी पलटकर खुद को योग्य बना सकता है और कह सकता है, लेकिन आपको अभी भी पाप को मौत के घाट उतारने की जरूरत है। पाप अभी भी एक वास्तविकता है जिससे परमेश्वर के लोग संघर्ष करते हैं। यह पहले से ही इसका हिस्सा है, लेकिन अभी तक तनाव नहीं है। पॉल आश्वस्त है कि हम पहले ही पाप पर विजय पा चुके हैं। पाप का निपटारा पहले ही किया जा चुका है। हम पहले ही पाप और मृत्यु द्वारा नियंत्रित और प्रभुत्व वाली शक्ति और क्षेत्र से मुक्त हो चुके हैं। हम मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के लिए एकजुट होकर इसके माध्यम से मुक्त हो गए हैं। वह पहले से ही है। फिर भी वास्तविकता यह है कि स्थानांतरण अभी भी समग्र और संपूर्ण रूप से नहीं हुआ है। वह अभी तक नहीं है। इसलिए पॉल को अभी भी आदेश देना होगा। पाप को मौत के घाट उतार दो, अपने नश्वर शरीर में पाप को हावी न होने दें। रहना, अपने आप को परमेश्वर के सामने जीवित के रूप में प्रस्तुत करो। यह वह पहलू है जो अभी तक नहीं है, जिसे पॉल द्वारा दिए गए आदेशों और अनिवार्यताओं के माध्यम से महसूस किया जाना चाहिए। लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि पहला भाग प्रेरणा प्रदान करता है, लेकिन दूसरे के लिए सक्षमता भी प्रदान करता है। अर्थात एकमात्र कारण जिससे कोई पाप पर विजय पा सकता है और उससे निपट सकता है, वह पहले कारण से प्रेरित है, बल्कि उसके द्वारा सक्षम भी है, और यहां तक कि उसे संभव भी बनाया गया है। एकमात्र तरीका जिससे हम पाप पर विजय पा सकते हैं, वह यह है कि पॉल आश्वस्त है कि हम पहले ही मसीह के साथ एकजुट होकर पाप के लिए मर चुके हैं। एकमात्र तरीका जिससे वह हमें खुद को जीवित के रूप में पेश करने, खुद को जीवित के रूप में भगवान को पेश करने का आदेश दे सकता है, वह यह है कि हम पहले से ही उसके पुनरुत्थान में मसीह के साथ एकजुट हो चुके हैं। इसलिए संकेत न केवल एक प्रेरणा के रूप में आवश्यक है, बल्कि यह पॉल के विचार में अनिवार्यता को पूरा करने के लिए सक्षमता है। तो हम पहले ही मसीह के लिए मर चुके हैं। हम पहले से ही हैं। याद रखें कि मेरे पास मंडलियों के साथ जो स्लाइड थी, हम पहले ही उस दायरे और क्षेत्र से मुक्त हो चुके हैं जो पाप और मृत्यु द्वारा नियंत्रित और हावी है, और हमें एक नए क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया है जो धार्मिकता और जीवन और भगवान की पवित्र आत्मा द्वारा नियंत्रित और नियंत्रित है। फिर भी एक मायने में वह स्थानांतरण अभी अंतिम और पूर्ण नहीं है, और यही वह हिस्सा है जो अभी तक नहीं आया है, जो अनिवार्यता को आवश्यक बनाता है। अंत में मसीह और सुसमाचार की समझ और उसके द्वारा आकार लिया गया जीवन त्रुटि और झूठी शिक्षा से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है, और मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों पर ध्यान दें। यह सिर्फ एक बुद्धिजीवी नहीं है। जब हम झूठे शिक्षकों से मुकाबला करने के बारे में सोचते हैं, तो हम आमतौर पर बौद्धिक रूप से सोचते हैं कि वे किसी बात पर गलत विश्वास करते हैं। लेकिन पॉल को उस परिणामी और अनुरूप जीवन शैली में भी दिलचस्पी थी जो कि गलत धारणा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए बार बार जब पॉल उदाहरण के लिए कुलुस्सियों को निर्देश देता है कि उनके सामने आने वाली झूठी शिक्षा इस रहस्यमय प्रकार के यहूदी धर्म से कैसे निपटें, तो वह सिर्फ उनके अविश्वास के पीछे नहीं जाता है। वह मौलिक रूप से भ्रामक जीवन शैली या धोखे का भी अनुसरण करता है जो कि उन्हें उस तरह की जीवन शैली के रूप में जन्म देगा जो उन्हें जीना चाहिए। तो यह सुसमाचार का सही विश्वास और समझ दोनों है, लेकिन साथ ही सुसमाचार के नैतिक निहितार्थ भी हैं जो चर्च को त्रुटि और झूठी शिक्षा से लड़ने में सक्षम बनाएंगे। मुझे लगता है कि अगर मुझे कुछ जोड़ना हो, तो मुझे लगता है कि इब्रानियों में जाने से पहले यह मेरा आखिरी है। मुझे लगता है कि अगर मुझे एक और जोड़ना हो, तो मुझे लगता है कि मैं कहूंगा कि आखिरी जो मैं जोड़ूंगा वह समुदाय के लिए पॉल की चिंता है, वह चर्च है, या कहने का एक और तरीका यह पॉल के लिए है, मुक्ति में कॉरपोरेट भी शामिल है, व्यक्तिगत निहितार्थ। अर्थात पॉल स्पष्ट है कि हमारे औचित्य का परिणाम एक नए समुदाय से संबंधित है जो सामाजिक भेदभावों से परे है, और वास्तव में यह एक प्रदर्शन है कि पूरी दुनिया में सामंजस्य स्थापित करने की भगवान की योजना पहले से ही चल रही है। तो चर्च एक प्रकार का साइनपोस्ट है। चर्च एक तरह से पहली किस्त है। चर्च उन सभी चीजों के मिलमिलाप का एजेंट है जिन्हें ईश्वर एक दिन यीशु मसीह के माध्यम से लागू करेगा। इसलिए पॉल चर्च लोगों की एकता और समुदाय से चिंतित है। पॉल ईसाई जैसी किसी चीज के बारे में नहीं जानता जो एक व्यक्ति है, केवल अपने आप में एक ईसाई है। वे अनिवार्य रूप से मसीह के शरीर से एक समुदाय से संबंधित हैं। और इसलिए यह बहुत दिलचस्प है, जब आप पॉल के पत्रों को पढ़ना शुरू करते हैं तो जो कुछ भी चर्च की एकता के लिए खतरा है वह उसे बहुत परेशान करता है। तो संभवतः यह आखिरी बात होगी जो मुझे लगता है कि मैं इसमें जोड़ूंगा, वह यह कि मुक्ति सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, इसके सामुदायिक आयाम भी हैं। और पॉल मूल रूप से एक समुदाय के रूप में इस निकाय चर्च की एकता के लिए चिंतित है। इसके बारे में हम और भी बहुत सी बातें कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पॉल के पत्रों को सरसरी तौर पर पढ़ने से यह बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। क्या कोई किसी और चीज के बारे में सोचता है जिसे आप इस सूची में जोड़ेंगे? मैं डॉक्टर डेव मैथ्यूसन न्यू टेस्टामेंट इतिहास और साहित्य पढ़ा रहा हूँ। 1 और 2 तीमुथियुस पर व्याख्यान 26।